महाकाल के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन, सभी को नमस्कार प्रणाम। काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और चिंतक, तो काव्य शास्त्र के 6 सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनमें पहले नंबर पर रस सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है। रस सिद्धांत काव्य शास्त्र में सबसे प्राचीन सिद्धांत के रूप में भी उद्धृत किया जाता है और काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत की बड़ी महती भूमिका है। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में भरत मुनि का नाम लिया जाता है और आचार्य भरत मुनि ही रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। रस की उत्पत्ति के विषय में भरत मुनि का रस सूत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो ये रस की उत्पत्ति निष्पत्ति के विषय में ये सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया है। आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना की और आगे चलकर रस पर बहुत विस्तृत रूप से विचार हुआ है। तो परवर्ती काल में रस पर कई आचार्यों ने कई ग्रंथ भी लिखे हैं और इस पर बहुत सारा काम हुआ है। अब सवाल है कि भरत मुनि से पहले भी रस की चर्चा हुई है या नहीं, तो ये भी एक बात है सामने आती है। तो भरत के पूर्ववर्ती साहित्य में भी रस की सत्ता विद्यमान थी, ये बात हम बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि के लिए अनेक तथ्य विद्यमान है। इस बात को आचार्य भरत मुनि भी स्वीकार करते हैं और नाट्य शास्त्र में रस की ग्राह्यता के विषय में ये वेदों की ओर ही संकेत करते हैं। नाट्य शास्त्र में उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जग रहा पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतम एव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अतर्वणाद अपि। तो इस श्लोक अनुसार हम कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु का आधार वेदों को ही मानते हैं। ऋग्वेद को पाठ के लिए, सामवेद को गीत, यजुर्वेद को अभिनय और अथर्ववेद को रस के लिए आधार माना गया है। भरत के उपर्युक्त श्लोक से सिद्ध होता है कि काव्य शास्त्र में रस का जो विकसित रूप है ये वेदों की ही देन है। इस प्रकार से ऋग्वेद आदि तीनों वेदों का विषय सर्वलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति आदि पारलौकिक तथ्यों से संबंधित विषयों के प्रतिपादन से है, जबकि अथर्ववेद की विषय वस्तु ऐहिक है। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। अथर्ववेद में लोक से संबंधित अनेक घटनाओं का विचार या विवेचन देखने को मिलता है। इस वेद में जो सूक्त है उनमें विवाह, प्रेम, संतान उत्पत्ति तथा प्रसूत स्त्री की रक्षा हेतु भव्य प्रार्थनाओं वाले मंत्र संकलित हैं। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रस, छंद, अलंकार तथा भाव और भाव सौंदर्य आदि तथ्यों को हम इस वेद में देख सकते हैं। वेदों में रसों की स्थिति का काव्य शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन देखने को नहीं मिलता, किंतु ऋग्वेद के ही उषा सूक्त तथा कुछ संवाद सूक्तों में हमें काव्य शास्त्रीय रस की अनुभूति हो सकती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ऋषियों को भी काव्य शास्त्रीय रस आदि तत्वों का ज्ञान अवश्य होगा, किंतु उन्होंने इस दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं किया। फिर भी कुछ मंत्रों में हमें इसका अनुभव हो सकता है। जैसे कि पुरूर्वा उर्वशी सूक्त में एक मंत्र है, ईशुर नाश्रिय ईशुदेर रश्न गोश शतश न रही हवीरे क्रतौ विदधा विद्युतनो रानामयुम चितयंत धूनय। अर्थात उर्वशी में पुरूर्वा मतलब तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ, अर्थात पुरूर्वा कहते हैं कि हे उर्वशी मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुणीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो गया हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीत कर असीमित गायों को नहीं ला सकता, अतः मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ। उपर्युक्त मंत्र में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन देखा जा सकता है और इसमें हमें काव्य शास्त्रीय रस के समान अनुभूति हो सकती है। वेदों की अपेक्षा आदि काव्य रामायण और महाभारत में रस तथा अन्य काव्य शास्त्रीय तत्वों का कुछ स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। तो रामायण तथा महाभारत से ही काव्य शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इन इतिहास ग्रंथों को अनेक प्रमुख महाकवियों नाटककारों ने अपनी अपनी रचनाओं के लिए आधार बनाया है। इस प्रकार से रामायण को तो आदि काव्य के रूप में जाना ही जाता है और इस आदि काव्य की रचना का मूल कारण भी महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर अवतरित करुण रस का एक अनूठा ही दृश्य था। इस करुण रस का उद्भूत दृष्टांत वाल्मीकि को रामायण जैसे महाकाव्य की रचना के लिए उद्वेलित कर देता है और वह शेषहा कह उठते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि कामम होइतम। उपर्युक्त श्लोक बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। इस श्लोक में अनेक रसों का संकेत विद्यमान है। रामायण में करुण रस की स्थिति को ध्यान में रखकर ही ध्वन्यालोककार आनंद वर्धन आचार्य इस स्थिति से इतने प्रभावित हुए कि उनको भी काव्य शास्त्र में रस को आत्म तत्व के रूप में स्वीकार करना पड़ा और वे अपने सारगर्भित शब्दों में कहते हैं जो कि यहाँ उल्लेखनीय है। आनंदवर्धन कहते हैं काव्यश आत्मा शा एव अर्थस्तता चा आदे कवे पुरा क्रौंच द्वंद वियोगोत्तः शोकः श्लोकत्वमागतः। अर्थात काव्य की आत्मा वही प्रतीयमान अर्थ है जैसा कि प्राचीन काल में आदि कवि वाल्मीकि का क्रौंच युगल के वियोग से उत्पन्न शोक करुण रस का जो कि स्थायी भाव है श्लोक अर्थात काव्य के रूप में परिणित हुआ था। महाभारत में महर्षि वेदव्यास तो इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि महाभारत परवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य बनेगा, साथ ही महाभारत की श्रेष्ठता का भी उल्लेख वो करते हैं। सर्वेषां कविः मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्यैव भूतानाम अक्षयो भारतद्रुमः। अर्थात वस्तु मात्र के लिए मेघ के समान ये अक्षय महाभारत रूपी वृक्ष सभी महाकवियों का उपजीव्य होगा। वेदव्यास जी ये भी कहते हैं कि महाभारत से बढ़कर कोई भी कवि अन्य काव्य नहीं लिख सकते हैं। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्थो विशेषेण। तो इस प्रकार से महाभारत की विषय वस्तु तथा इसकी विपुलता, विस्तृतता और विविधता के कारण इसके विषय में कहा जाता है यन्ना भारते तन्ना भारते। इस प्रकार से वेदों के अतिरिक्त विशेषकर रामायण और महाभारत ने ही प्रमुख रूप से परवर्ती साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक विशाल पृष्ठभूमि चिंतन के लिए उपलब्ध कराई है। इन क्षेत्रों में काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हमें इनमें विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है और अत्यंत प्रौढ़ और परिष्कृत रसभाव समन्वित शैली भी इसमें समन्वित है। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने इन ग्रंथों से अनेक श्लोक रसभाव या काव्य कोटियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो ये भरत के पूर्ववर्ती साहित्य में भी रस का प्रयोग हम खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के पहले भी रस की सत्ता विद्यमान थी और वैदिक साहित्य और उसके बाद रामायण महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथों में रस का बड़ा ही सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन हम देख सकते हैं, जो कि परवर्ती साहित्य के लिए एक विशाल पृष्ठभूमि को वो तैयार करते हैं। और इस प्रकार से रस सिद्धांत को काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में विशेष रूप से समादृत या विशेष महत्व दिया जाता है। अगले ऑडियो में हम भरत के नाट्य शास्त्र में रस के विवेचन पर विचार व्यक्त करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम और महाकाल के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सब अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित और सतर्क सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद मीना, संस्कृत अध्ययनशाला और काव्यशास्त्रीय चिंतक और सिद्धांत में रस सिद्धांत के पृष्ठभूमि के विषय में इसमें विचार व्यक्त किया गया है। अगले ऑडियो में भरत के नाट्य शास्त्र में रस के विषय में चिंतन या विचार व्यक्त किया जाएगा। नमस्कार, पुनः पुण्येन नमस्कार।